ओम श्री साई राम। रेडियो साई के सभी श्रोताओं को साई प्रेम वाणी की तीसरी श्रृंखला में स्वागत है। आज नववर्ष के इस बेला में इस दिव्य नगरी प्रशांति निलयम से आप सभी श्रोताओं को ढेर सारी मंगल कामनाएं। भगवान बाबा की असीम अनुकंपा से साई प्रेम वाणी हम सभी हिंदी भाषियों के लिए एक दिव्य प्रसाद है। साई प्रेम वाणी की इस प्रस्तुति में आज हम सत्य साई विद्यालय के एक पूर्व छात्र से वार्तालाप करेंगे, प्रेम अवतार श्री सत्य साई। इस श्रृंखला में पुट्टपर्ति की अद्भुत कथा सुनेंगे, भगवान बाबा का दिव्य संदेश सुनने का सौभाग्य भी मिलेगा और एक मधुर भजन का प्रशिक्षण भी करेंगे। ये सर्वज्ञ है कि कई भक्तजन नववर्ष का शुभारंभ प्रशांत निलयम में भगवान की सन्निधि में करना चाहते हैं। इस दिन की विशेषता ये भी है कि न केवल हर भक्त बल्कि भगवान के हर शिक्षा संस्थान के पूर्व छात्र अपने परिवार सहित भगवान के चरण कमलों में अपनी भावभीनी कृतज्ञता व्यक्त करने आते हैं। भगवान ने 1968 में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस सभा में तब से आज तक के पूर्व छात्रों की उपस्थिति इस कार्यक्रम को अनोखा रूप देती है। इन तीन दिनों के कार्यक्रम को साई प्रेम बंधम कहा जाता है। साई का प्यार जीवन आधार। इस श्रृंखला में आज हमारे अतिथि हैं श्री विकास मिश्रा, जो कि मुंबई में वकालत करते हैं, और उनके साथ वार्ता कर रहे हैं श्री कपिल जावा, जो कि एक बैंकर हैं, और ये दोनों ही श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं।
ओम श्री साई राम। हमारे समक्ष स्वामी के एक स्टूडेंट विकास मिश्रा आए हैं। विकास ने अपनी एजुकेशन पुट्टपर्ति और वृंदावन से करी। इन्होंने सन 1984 में स्वामी के कॉलेज में एडमिशन लिया और सन 1991 तक ये स्वामी के पास रहे। आज ये बॉम्बे में बहुत ही प्रसिद्ध वकील हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि आज ये हमारे पास यहाँ पे रेडियो साई के स्टूडियो में आए हैं। तो विकास, हम आपसे पूछना चाहेंगे, हर साल पुट्टपर्ति आते हैं 31 दिसंबर 1 जनवरी को, और ऐसा क्या है स्वामी का प्यार जो आपको हर साल यहाँ पे खींचा ले आता है? कुछ ऐसा अनुभव जो आपने वहां पे पढ़ते वक्त अनुभव किया हो जो इस प्यार का आधार बन गया और हर साल आप यहाँ आते हैं?
कपिल, ऐसे तो हर विद्यार्थी ने स्वामी का प्यार यहाँ महसूस किया हुआ होता है जो भी वृंदावन या प्रशांति में पढ़ा हुआ होता है। कि मेरा एक इंसिडेंट, एक वाक्य मैं सुनाता हूँ। मेरे जन्म दिवस का था, 12 अक्टूबर का। यहाँ भी अभी भी ट्रेडिशन है कि हम फूल एक लेके जाते हैं स्वामी को, एक गुलाब का फूल हम लोग बाबा को अर्पित करते हैं। तो मैंने गुलाब का फूल स्वामी को ऑफर किया स्वामी
जन्मदिन पर।
जन्मदिन पर स्वामी ने डोर ओपन किया, अगेन ही क्लोज, अगेन ट्राई सेट में खड़ा हुआ, फिर बैठा, फिर खड़ा हुआ, फिर स्वामी मेरे सर तरफ आ गए हंसते हुए। तेलुगु में बोल रहे थे, कहां से लाए? तो मैं समझा, स्वामी समझ गया बाहर से लाया। फिर अगेन दूसरा प्रश्न था स्वामी का, कितने का है? वो भी तेलुगु में था प्रश्न, लेकिन मैं उसका मतलब समझ पा रहा था कि स्वामी पूछ रहे थे कितने का है। तो स्वामी 50 पैसे।
50 पैसे का एक गुलाब पैसे उस टाइम पर।
तो बोला स्वामी 50 पैसे। फिर बोला कि वापस स्वप्न पूछा कि वेस्ट ऑफ मनी रा दुन्न पोता, जस्ट डिड एक एक्शन ऐसे किया जैसे मेरे को तरफ जैसे मार रहे हैं मुझे, ऐसे जब हाथ ऐसे उठे, पैसे की बर्बादी है।
तो मैं अपने हिंदी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि स्वामी जब अपने प्यार से किसी को डांटते थे तो उनके प्यार में वो उनको दोना पोता बुलाते थे। हाँ। और दोना पोता का अर्थ तो वैसे भैंस होता है, लेकिन वो एक प्यार था उसमें भी बहुत।
यस,
बहुत ही अच्छा आनंद मिलता था अगर स्वामी किसी को दोना पोता बुलाते
जी कपिल जी कपिल। तो वैसा बोला स्वामी ने और बोला ये पुष्प नहीं हृदय पुष्प देना चाहिए तुम्हें। तो उस समय के बाद से मैं कहीं भी मंदिर में कहीं भी जाता हूँ तो मैं फ्लावर फूल नहीं अर्पित करता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरा हृदय ही मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, हृदय अर्पित कर रहा हूँ मैं स्वामी को।
बहुत बहुत खूब बहुत खूब। तो विकास आप परती में पढ़े, मैंने तो सुना आप हॉस्टल में बहुत एक्टिव हुआ करते थे, आप काफी सारी एक्टिविटीज भी किया करते थे, तो कुछ ऐसा अनुभव आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहते हैं कि जब आपने कुछ किया स्वामी के लिए और फिर स्वामी ने आपको आशीर्वाद दिया?
कपिल एक ऐसा इंसिडेंट है, ये घटना मेरे लिए आई ओपनर थी कि मेरे जीवन में पूरा मेरा जीवन का उद्देश्य बदल दिया। मेरे फाइनल एमएससी में थी, एक शब्द में एक लाइन में उसको वर्णन करना चाहूंगा कि आप जो भी करो लेकिन कुछ मत बनो, जैसे स्वामी इंग्लिश में बोलते हैं डू एवरीथिंग बट बी नथिंग। एक इंसिडेंट था, स्वामी आ रहे थे उन दिनों हॉस्टल में, तो स्वामी उनके साथ कुछ चीफ गेस्ट भी ला रहे थे, तो मैं सोचा हम लोग क्या करें स्वामी के लिए, तो मैंने वार्डन को बोला हम लोग एक नाटिका करते हैं स्मॉल ड्रामा, तो उसमें हम लोग ने तुलसीदास त्यागराज और मेरे ख्याल से एक और संत थे कनकदास, इनके तीन इंसिडेंट्स उनके जीवन आधारित, क्योंकि स्वामी ने बोला था मुझे भारत देश का पुरानी संस्कृति वापस लानी है, तो मैं सोचा उसके लिए मैं स्वामी के लिए क्या करूं, तो मैंने से तीन संत थे बहुत फेमस संत उनके इंसिडेंट से एक एक घटना उस दिन वो ड्रामा किया। वो ड्रामा हुआ, चीफ गेस्ट सबको अच्छा लगा, होने के बाद किसी को मालूम नहीं कि मैंने, मतलब मुझे तो स्वामी ने बुलाया ही नहीं, ना ही हॉस्टल में किसी ने पहचाना कि ये ड्रामा मैंने किया है, सिर्फ बच्चे लोग आए करके गए, गाया किसी ने ये किया। मैं शाम को आके पोर्टिको में बैठ गया, किसी को मालूम नहीं किया, ना वार्डन को भी पता चला, सिर्फ जो राममोहन सर
हॉस्टल में किसी ने आपको कुछ नहीं
किसी ने कुछ पूछा भी नहीं कि विकास बहुत अच्छा हुआ। तो मैं पोर्टिको में आके बैठ गया, स्वामी सीधे मेरे पास आए और मेरी आंख में आंख डाल के बोलते हैं वो बच्चे का गाना बराबर नहीं था, बड़े बॉयज की मिस्टेक्स है, तुम लोग ने ऐसे बच्चे को क्यों सिर, मुझे बोला और मैं समझ गया स्वामी मुझे बोल रहे हैं, किसी को पता नहीं, उतना बोल के स्वामी चले गए। अरे मुझे लगा स्वामी जानते हैं लेकिन स्वामी बोल क्यों नहीं रहे कि इसने ये किया। अरे उसके बाद मुझे ये सीखने को मिला कपिल, और ये लाइफ में मेरे आज भी जब मेरे को कुछ कहीं भी रिकॉग्निशन या कहीं भी कोई महत्व नहीं देता है तो मैं समझ, जब स्वामी ने बोला कि ये अपने को करना है स्वामी के चरण में अर्पित कर देना है, कोई मुझे ला के शाबाशी देगा कोई गिफ्ट देगा अरे तुमने ये किया, ऐसा कहीं नहीं होगा, तुम्हें वो बस साइलेंटली काम करके और उनके चरणों में दे देना है और बी नथिंग
दीना
थे, अपना ईगो तो वहीं छोड़ देना है, अगर तुम वो उसमें लग गए कि मेरे को कोई पहचानेगा वर्ल्ड में, मेरे को बुलाया जाएगा, स्वामी तुमको इसके लिए बनाया नहीं,
वो देख रहा है और वो ही देगा
बस। क्योंकि अगर हमको चाहिए कि मैं, अगर हम लोग बोलते हैं हम लोग जो भी ओल्ड स्टूडेंट्स या भक्त हैं अरे सब स्वामी कर रहा है, क्या हमारे जीवन में हम फॉलो करते हैं, हम हम्बल बनने की कोशिश करते हैं, अरे नहीं आई डिंट डू, अरे मैं काम मैंने नहीं किया स्वामी ने किया है, क्या हमारे जीवन में वो असली में हम अमल में लाते हैं? तो ये बात स्वामी ने मेरे को अमल में लाने के लिए कहा। आज से अभी भी मुझे भी कोई सेवा दल में जाता हूं या समिति में काम करता हूं कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती है तो मुझे बुरा नहीं लगता है, वो मेरा इंसिडेंट में लाइफ लर्निंग में था, या कहीं मैं केस जीत गया कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया मुझे तो लगता है नहीं भगवान को मालूम है ना बस, यानी कहीं नाम नहीं आया पेपर में या किसी
तो आपकी,
ने
आपकी ये बात सुनकर मुझे याद आ रहा है कि हमारे हिंदी एक चैनल में एक सीरियल है आपकी अदालत,
यस।
तो लेकिन यहाँ पे आपने साई की अदालत है,
सही बात है
कि साई ने सुन लिया आपको, बस वही है,
बस सही बात
असली
है।
तो वही है
असली अदालत, वही है
असली अदालत वही है, और आप तो वकील रह चुके हैं,
यस।
तो आपसे ज्यादा बढ़कर कौन जा सकता है। तो एक बात बताइए, आपने बीएससी करी वृंदावन से,
यस कपिल,
स्कूल में पढ़े और फिर आपने एमएससी करी, तो ये एमएससी के बाद वकील कैसे बन गए आप, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे
कपिल, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं वकालत पढ़ूंगा और लॉ प्रैक्टिस में जाऊंगा, जब तक कि मेरे पास फॉर्म आया। ये वाक्य है कपिल 2005 का, मैं यहां से एमएससी करके निकला था और एक घटना है, मुझे स्वामी से निर्देश चाहिए था कि स्वामी मैं क्या करूं लाइफ में, स्वामी को काफी, स्वामी ने हमारे फाइनल ईयर में इंटरव्यू में बुलाया था, हमारे साथ इंडिविजुअल फोटोग्राफ्स भी लिए थे, तो मैं पूछा स्वामी क्या करूं, तो स्वामी ने बहुत कुछ बोला ये मत करो वो मत करो, फाइनली यही बोला कि आप सेवा करो,
सेवा करो,
उसका जो मीनिंग है बहुत विशाल है, तो सेवा में क्या करूं स्वामी। तो उस समय मुझे समझ नहीं आया कपिल, लेकिन जब 2005 में मेरे घर पे अचानक लॉ का फॉर्म आता है, बोलता ये पढ़ना है, और मैं पढ़ के पास आउट हुआ, और ये कपिल एक बड़ा इंसिडेंट है कि वकालत पढ़ने के बाद मैंने किसी की चेम्बर ज्वाइन नहीं की, यानी जो भी वकील आज पास आउट होते हैं किसी न किसी सीनियर के चेम्बर में ज्वाइन होते हैं।
तो आपका सीनियर कौन थे?
मेरे सीनियर वही थे, क्योंकि मेरे फाइनल इंटरव्यू में स्वामी ने कहा था मुझे, आई एम इन यू, अबव यू, बिलो यू, अराउंड यू। आपको सुन के बहुत आश्चर्य लगेगा, मैंने वकालत बिना सीनियर के सीखी है, डायरेक्ट ब्रीफ्स मुझे मिली हैं, और जो मेरे इन यू ऑन यू ही इज माय सीनियर, वो मेरे सीनियर रहे हैं, और उन्होंने मुझे हर पल कैसे वकालत करना, वकालत के जो फाइन प्रिंट्स हैं वो भगवान ने सिखाया मुझे।
तो आप जब 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आते हैं और विनम्रता के साथ स्वामी को अपनी कृतज्ञता अर्पण करते हैं, तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आपने इसको महसूस किया, आपने अनुभव किया है।
जी कपिल, एक इंसिडेंट था शायद 2009-8 में, जब हमारे सब पूर्व विद्यार्थी आए हुए थे प्रशांति निलयम में, तब हमें स्वामी ने प्रेयर हॉल में बुलाया और हर विद्यार्थी को चरण स्पर्श दिए, अपने चरण स्पर्श दिए, और पूछा सबसे, बच्चों तुमको कैसा लगा यहाँ, बॉयज हाउ यू फेल्ट। तो हमने बोला स्वामी बहुत आनंद आया स्वामी आपके सानिध्य में, एवरी ईयर 31st आप लोग यहाँ आया करो, स्वामी ने ब्लेसिंग दिया।
स्वामी का आदेश था, मतलब आदेश आना ही आना है।
तो आदेश था, तो हम लोग जिन्होंने वो इंसिडेंट घटना थी प्रेयर हॉल की, तो वो लोग कभी नहीं भूल सकते कि स्वामी ने जब अपने जीते जी हमको बोला कि यहाँ आते रहिए 31st और 1st को, तो हम लोग चाहे दुनिया, और ऐसे भी हमारे जो लीगल प्रोफेशन में कोर्ट्स बंद रहते हैं टूवर्ड क्रिसमस के बाद, तो हमें तो भगवान की दया से समय मिल पाता है, कोई लीव की अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग यहां आ पाते हैं।
आप वकील बन गए मुंबई जैसी सिटी में, तो जब बने तब तो बॉम्बे था। तो जब मैंने सुना है वकीलों का जो काम होता है, इसमें तो बहुत सारी आपका ताल्लुकात होता है जो उन लोगों के साथ जिन लोगों ने बहुत सारे क्राइम्स करे होंगे जैसे, तो ऐसे में आप क्रिमिनल लॉयर हैं, आप सिविल लॉयर हैं, और बहुत मुश्किल होती है स्वामी की वैल्यूज, जो स्वामी के सिद्धांत हैं उन पर चलना इतना आसान नहीं है। आपको ये मुश्किलें महसूस हुई हैं, और अगर हुई हैं तो आपने कैसे स्वामी की सिद्धांतों में चलना सीखा?
कपिल, ऐसे मुश्किल तो नहीं हुई है, लेकिन मुझे एक वाक्य याद आता है मेरे विद्यार्थी जीवन का। मैं शायद फाइनल ईयर में था, सेकेंड ईयर में था, हम लोग वृंदावन में बाहर बैठे हुए थे, स्वामी खड़े थे वहां पे, और स्वामी के बालों में एक झाड़ का एक पत्ता आके लटक जाता है। स्वामी के बाल तो आप जानते हो कुछ भी फंस सकता है, एकदम घुंघराले बाल थे, तो उसमें ऐसे पत्ते तो फंस जाते हैं। तो एक स्टूडेंट आके बोलते, स्वामी स्वामी लीव स्वामी, बोलते स्वामी हाँ, स्वामी एक्टर जैसे सुना नहीं, हाँ वापस बोलते, नहीं नहीं स्वामी हाँ हाँ, फॉरेस्ट रहा अपने बालों की तरह स्वामी हाथ कर, फॉरेस्ट मैन दिस इज फॉरेस्ट, इंग्लिश में बोला स्वामी ने, मतलब ये जंगल है, फॉरेस्ट का मतलब, फिर स्वामी ने उसको विभाजित करके बताया, फॉर रेस्ट मतलब फॉर रेस्ट, आप सब मेरे ऊपर छोड़ दो और आप रेस्ट करो। तो यही जीवन में मैंने अपनाई है कपिल, जब मेरे लाइफ में कई इंसिडेंट आते हैं, मुश्किलात भी आती है कि भाई आपके सामने प्रलोभन भी आते हैं, तो हम लोग को सोचना नहीं, हम लोग भगवान के लिए काम कर रहे हैं, और हमें कहीं जो हमारा काम है सेवा, क्योंकि इसका एक इंसिडेंट और था कपिल मैं बताना चाहूंगा। हमारे पूर्व विद्यार्थियों को स्वामी ने एक पूर्णचंद ऑडिटोरियम में इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तभी उसी समय एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा था स्वामी से कि स्वामी हमें सेवा करने के लिए समय नहीं मिलता है, मेरा काम का ऐसे है कि हमें नारायण सेवा भजन और हम कहीं झाड़ू लेके साफ नहीं करने जा सकते हैं। तो स्वामी ने बोला ये सब कोई जरूर नहीं है, आपको जो आप कर्म करते हो, आपका जो काम है, जैसे आप जॉब करते हो, मैं वकालत करता हूं, कोई डॉक्टरी करता है, उसी को सेवा समझ के करिए, वो आप मुझे अर्पण कर रहे हैं, तो जब मैं स्वामी को अर्पण कर रहा हूं तो उसमें कोई गलत काम मैं कैसे कर सकता हूं, जब मैं स्वामी को मेरा जो भी वकालत का पेशा है वो अर्पण कर रहा हूं तो मैं उसमें किसी से क्या गलत कर सकता हूं। तो दैट इज वो मेरा एक गाइडिंग प्रिंसिपल रहा है कपिल, उस आदेश के कारण हम लोग सही मार्ग पर आज तक चल पा रहे हैं, और वही उनकी इच्छा रही है।
तो आपने स्वामी के आदर्श को अपना जीवन का सिद्धांत बना लिया, ऐसा नहीं आपकी जीवन में मुश्किलें नहीं आई, मुश्किलें आई लेकिन आपने स्वामी के ऊपर छोड़ दिया, फॉर रेस्ट
जी कपिल,
और फिर स्वामी ने आपका हमेशा साथ दिया, और यही जो है, यही स्वामी का जो प्यार है हर साल आपको यहाँ पे लाता है 31 दिसंबर और 1 जनवरी को। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आप आए, और आपने रेडियो साई के श्रोताओं के साथ अपने अनुभव शेयर किए,
धन्यवाद।
और मैं आशा करता हूं कि आप हर साल आएंगे और स्वामी को अपनी कृतज्ञता अर्पण करेंगे। जय साई राम।
जय साई राम।
अभी आप साई का प्यार जीवन आधार इस श्रृंखला में पूर्व छात्र विकास मिश्रा के साथ वार्ता सुन रहे थे। ये वार्ता रेडियो साई प्रशांत निलयम के स्टूडियो में जनवरी 2019 को रिकॉर्ड की गई थी। भगवान और उनके छात्रों के बीच का प्रेम एक दिव्य संबंध है। इसकी अभिव्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है। आइए इसकी एक झलक हम इस गीत में देखें, जो श्री सत्यसाई विद्यालय प्रशांत निलयम के छात्रों ने 2014 में भगवान के श्री चरणों में प्रेम पूर्वक अर्पण किया था।
प्रेम की ये पुकार दिल की पुकार तुमको अर्पण करे साईं मां, मंजिल भी तुम्हें रसता भी तुम्हें हर कण कण में तुम्हें साईं मां।
నా పెద్ద ప్రాపర్టీ కాలేజీ పిల్లలే,
నాకు మీకు డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉంటుంది, అది నా వెంటనే ఉన్నాడు అనేటువంటి భావాన్ని దృఢం చేసుకోండి. ఈ రెండు సంబంధాన్ని భద్రంగా పెంచుకోండి.
ప్రైమరీ స్కూల్, కాలేజీ, హైయర్ సెకండరీ స్కూల్ వీళ్ళందరు పిల్లలంతా కూడా నా వెంట వెంటనే ఉంటుంటారు. నన్ను వదిలి వారు పోరు, వారిని వదిలి నేను ఉండలేను.
కనుక మా విద్యార్థులే నా ప్రాపర్టీ.
అడుగు అడుగునా నడిపించే సకుడవు, అణువు అణువులోనా వినిపించే వేణు, విడదీయలేనిది మన బంధమే ఇది, ప్రేమకై అంకితం మన ప్రియ స్వామికై అర్పితం మా హృదయం.
ప్రేమకి పుకార్ హర్ దిల్కి పుకార్ తుమ్కో అర్పణ కరే సాయి మా, మంజిల్ భీ తుమ్హీ రసదా భీ తుమ్హీ హర్ కణ కణ మే తుమ్హీ స
प्रेम का जीवंत स्वरूप धरकर 85 साल हमें धन्य किया। उनका हर आचरण, उनका हर वचन, उनका हर विचार इसी प्रेम का प्रतीक, इसी प्रेम से ओतप्रोत था। आइए इसका एक दृष्टांत उन्हीं के दिव्य वाणी में सुनते हैं।
మంచి మనసు నడత మంచిగా లేకున్నా సాయి ఎట్లు మిమ్ము మెచ్చుకొనును. శాంతి ప్రేమదాయి సంతోష సుఖదాయి ప్రేమ సాయి మిమ్ము ఎట్లు పెంచుకొనును. ప్రేమ సాయి ఎట్లు పెంచుకొనును.
అచ్చే మన్ ఔర్ సహీ చరిత్ర కే బినా తుమ్ యే ఆశా కేసే కర్ సక్తే హో కి సాయి తుమ్హే ప్రోత్సాహన్ దేంగే. శాంతి ప్రేమ సంతోష్ ఏవం సుఖ ప్రదాయక ప్రేమ సాయి సే తుమ్ యే అపేక్షా కేసే కర్ సక్తే హో కి వే తుమ్హే అప్నాయేంగే.
ఈ దేహాన్ని పట్టుకుని మనం ఎందుకు ఇంత ప్రాకులాడుకోవటం?
హమ్ అప్నే శరీర్ కే ప్రతి ఇత్నే ఆతుర్ క్యూ హై?
మన అజాగ్రత్తో కొన్ని కొన్ని లభ్యం అవుతుంటాయి.
వాస్తవ మే కుచ్ చీజే హమారీ అజ్ఞానతా వశ ఆ జాతీ హై.
కొన్ని ప్రేమతత్వం చేత స్వీకరిస్తూ ఉంటాము.
తథా కుచ్ చీజో కే ప్రతి లగావ్ కే కారణ హమ్ ఉన్హే అప్నా లేతే హై.
కానీ వచ్చిన వచ్చినట్టుగానే పోవాలి.
లేకిన్ జిస్ ప్రకార్ వో చీజే ఆయీ థీ ఉన్హే ఉసీ ప్రకార్ జానా హోగా.
ఒక చిన్న ఉదాహరణ.
ఏక్ ఛోటా సా ఉదాహరణ.
స్వానుభవమే నీకు బోధిస్తున్నాను.
భగవాన్ అప్నే అనుభవ్ కే ద్వారా హమే సిఖా రహే హై.
ఒక బిడ్డకు ఇక్కడ వాపు వచ్చేసేసింది.
ఏక్ బచ్చే కే గాల్ పర్ భారీ సూజన్ ఆ గయీ థీ.
కానీ ఆ బిడ్డ భరించుకోలేనంత బాధపడుతుండాలి.
ఉసే సూజన్ కే కారణ్ అసహనీయ పీడా హో రహీ థీ.
డాక్టర్ చూపిస్తే ఇది చాలా 20-25 డేస్ అవుతుంది అన్నారు.
డాక్టరు కా కెహనా థా కి సూజన్ 20-25 దిన్ తక్ రహేగీ.
వాడు ఏడ్చిపోతున్నాడు పాపం.
వే బచ్చా బహుత్ రో రహా థా.
నేను పిలిచాను లోపల.
భగవాన్ నే ఉసే బులాయా.
నీవు ఏడ్చవద్దు.
ఔర్ కహా మత్ రో.
స్వామి నీ వెంట ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఏడ్పు?
జబ్ స్వామి తుమ్హారే సాథ్ హై తబ్ రోనే కి క్యా ఆవశ్యక్తా
అని తీసి కొంచెం స్వీట్ తినిపించాను.
స్వామి నే మిఠాయి కా సృజన్ కర్ ఉస్ బచ్చే కో ఖిలాయా.
తర్వాత ఇంక నీవు పోమన్నా.
స్వామి నే ఉసే జానే కా ఆదేశ్ దియా.
తల్లి తీసుకుని పోయింది.
మా అప్నే బచ్చే కో లేకర్ చలీ గయీ.
ఆ లైన్ నేను తీసుకున్నాను.
ఔర్ స్వామి నే ఉస్కీ పీడా అప్నే ఊపర్ లేలీ.
ఇది నిజముగా దేహంలో పుట్టిందైతే భరించలేనంత బాధ ఉంటుంటారు.
వాస్తవ మే యే పీడా మానవ దేహ కే లియే అసహనీయ హై.
అలాంటి దీన్ని చూచేదంతా కూడా చాలా మంది చూస్తున్నారే, స్వామి ఎట్ల ఈ పండుగను మేము జరిపేది అని శ్రీనివాసన్ చాలా బాధపడ్డాడు.
శ్రీనివాసన్ కు బహుత్ దుఃఖ హో రహా హై కి జబ్ ఇత్నే సారే భక్త్ స్వామి కో పీడా మే దేఖ్ రహే హై తబ్ హమ్ యే త్యోహార్ హర్షోల్లాస్ కే సాథ్ కేసే మనా సక్తే హై.
కానీ లోపల ఏ మాత్రం మాట్లాడడానికి వీలు కాదు.
సూజన్ కే కారణ్ బాత్ కర్నా భీ సంభవ్ నహీ హై.
ఈ రెండిటికి జాయింట్ లోపల వచ్చేసేసింది.
యే సూజన్ దోనో జబడో కే బీచ్ మే హై.
తినడానికి కూడా వీలు లేదు.
భోజన్ కర్నా భీ సంభవ్ నహీ హై.
ఏం కొన్ని దినాలు దేహానికి భోజనం లేకపోతే ఏం నష్టం అవుతుంది?
अगर इस देह ने कुछ दिन भोजन ग्रहण नहीं किया तो इसमें हानि ही क्या है? स्वामी ने इसकी कोई परवाह नहीं
की। स्वामी
ने इन बातों को कोई महत्व नहीं दिया।
स्वामी प्रारंभोत्सव चाहिए कदा मेरे माटाड़ता।
श्रीनिवासन ने स्वामी से पूछा कि ऐसी स्थिति में स्वामी अपना दिव्य संदेश कैसे देंगे?
आदेहमे बाधन नाक
मुझे इस पीड़ा का अनुभव तभी होगा जब मैं इस शरीर को अपना मानूंगा। यह शरीर मेरा नहीं है, यह शरीर तुम्हारा है।
मी देहानंता ना बाड़ी,
यहाँ तक कि तुम सभी का शरीर मेरा है।
कल्प नहीं मैं बादलंता नहीं तीसुटा,
इसीलिए तुम्हारे सारे दुखों का भार मैं स्वयं धारण करता हूँ।
आदि नायक का कर्तव्य,
भगवान इसे अपना कर्तव्य समझते हैं।
काबटी ना देह काबटी लक्षण चेन,
इस देह को भगवान अपना नहीं मानते इसलिए उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। सिर्फ वर्तमान में ही नहीं, किसी भी समय इस शरीर को कोई भी कष्ट हो, भगवान के लिए उसका कोई महत्व नहीं है।
कलगने प्रति विषयानि कुडनु ना अनुभविंची मीकु अंदिस्तुन्ना,
इसीलिए भगवान हमें जो भी कहते हैं अपने अनुभवों के आधार पर ही कहते हैं।
इदि माय लाइफ इज माय मैसेज,
इसीलिए मेरा जीवन ही मेरा संदेश है।
इस प्रवचन का अनुवाद और पूरी प्रस्तुति हमारे श्री सत्य साई विद्यालय के छात्रावास के बालकों ने खुद करी है। यह प्रवचन 21 जुलाई 2002 को प्रशांत निलयम में दिया गया था।
आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी।
साईं जीवन में है सर्वस्व ज्ञान, सबसे प्यारा शक्ति प्रदाता है तेरा नाम। मेरा जीवन है मेरा संदेश, आपके वचन ही हैं अनंत उपदेश। प्रेम अवतार श्री सत्य साई, इस श्रृंखला में हम भगवान की जीवन गाथा के श्रवण का आनंद लेंगे। अभी हम श्री कस्तूरी जी द्वारा लिखित भगवान की जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम के कुछ अंश का अध्ययन करेंगे। अवतार के जन्मभूमि की कथा भी अवतार की तरह रोचक है। गोलपल्ली से पुट्टपर्ती की कथा और उसके अंतर्निहित सार को समझेंगे।
पुट्टपर्ती का अर्थ बांबियों से भरा हुआ ग्राम होता है। प्राचीन काल में इस ग्राम को गोलपल्ली कहा जाता था। गोपालों से भरे इस गांव में नंदनवन श्री कृष्ण के गोकुल के समान, घर घर में दूध दही की अखंड नदियां प्रवाहित होती थीं। श्यामल गोपाल अपनी मुरली की धुन में मस्त हो गौएं चराते थे। गोलपल्ली के दूध का विशिष्ट स्वाद एवं माधुर्य आसपास के प्रदेशों में विख्यात था, पर काल की गति नहीं टलती। इस ग्राम के एक गोपाल पर एक दिन एक दुखद प्रसंग आया। उसकी एक गाय आसपास की पहाड़ियों में चरकर जब वापस आती तब उसके तन सूखे हुए पाए जाते, दूध की एक बूंद तक न मिलती। गोपाल को अत्यंत अचरज हुआ, सो उसने गाय का पीछा करने का निश्चय किया। वह उसके आसपास ही रहने लगा। अगले दिन सब गायें वापस लौटीं और चारा ग्रहण करने के पश्चात अपने अपने बछड़ों को दुग्धपान कराने लगी, किंतु वह गाय अपने बछड़े तथा अन्य गायों को छोड़कर चुपचाप वहां से चली गई। चरवाहे ने उसका पीछा किया। चलते चलते वह गांव के बाहर एक खेत में स्थित एक बांबी के निकट पहुंची। गोपाल का कौतूहल एवं आश्चर्य बढ़ता ही गया। बांबी से चपलतापूर्वक एक नाग निकला, मानो वह इस गौमाता की प्रतीक्षा में ही था। गाय के दूध से भरे थनों के निकट पहुंचकर ऊर्ध्वमुखो नाग अपने विषैले मुख से अमृत तुल्य दुग्ध का पान करने लगा। हाय, यह कैसा छल है! यूं सोचते सोचते गोपाल का हृदय कांप उठा, उसका विवेक छीन हुआ। क्रोधित हो उसने तुरंत ही पास पड़ा एक गोल पत्थर उठाया और दोनों हाथों से जोर लगाकर नाग के फन पर दे मारा। इस प्रहार से जर्जरित हो अपनी अंतिम सांस लेते हुए नागराज ने श्राप दिया। सर्पों की अनेक बांबियों के प्रादुर्भाव से ही तुम्हारा यह गांव नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के कारण अल्प समय में ही वहां के खेत, बगीचे, घर आंगन, पहाड़ आदि सब स्थानों पर बांबियां ही बांबियां दृष्टिगोचर होने लगी। गोधन का भी क्षय होने लगा। ग्राम वासियों के मुख पर इस निराशामय वातावरण से उदासी छा गई। अब गोलपल्ली को बिलों का गांव कहा जाने लगा। सामान्य जन के लिए पुट्टपर्ती नाम का ही अभिधान किया गया। सुशिक्षित लोगों ने इसे वाल्मीकिपुर नाम दिया। वाल्मीक संस्कृत शब्द है। महर्षि वाल्मीक को अपना नामाभिधान वाल्मीक पर से ही प्राप्त हुआ था। वाल्मीकि जी के नाम से इस गांव का स्मरण करने पर हमें रामायण की याद आती है और मन घोर निराशामय वातावरण में भी उसे शांति मिलती है। संभवतः इसी भावना से प्रेरित होकर लोगों ने इस ग्राम को वाल्मीकिपुर नाम प्रदान किया होगा। यह कोई कपोल कल्पित कथा नहीं है, यह एक सत्य घटना है। इसका प्रमाण दिलाने के लिए ग्रामवासी शंकित लोगों को गांव की सरहद पर स्थित एक मंदिर में ले जाते हैं। उस मंदिर में वहां के अर्चित देवता का विग्रह अर्थात उस चरवाहे का क्रोधित हो नागराज पर फेंका गया वह गोल पत्थर स्थापित है। उस पर नागराज के रक्त की रेखा अब भी स्पष्ट दिखाई देती है। प्रहार का चिन्ह भी विद्यमान है। वे बताते हैं कि नागराज के श्राप के कारण ही गोलपल्ली की दूध दही की समृद्ध सरिता शुष्क हो गई और सब गोपाल निर्धनो जीवन व्यतीत करने लगे। तब इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए वहां के बड़े बूढ़ों ने उस पत्थर को गोपाल स्वामी मानकर मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा की और पश्चाताप जन्य अश्रुओं की धारा से गोपाल स्वामी का पद सिंचन करते हुए पूजन किया जाने लगा। इस संबंध में एक और भी घटना वर्णित की जाती है। ग्रामवासी कहते हैं, जब से यमुना के तीर तीर ठिठोलियां करने वाला पाके बिहारी इस चित्रावती में पधारा है, तभी से हमारा गांव तो मथुरा वृंदावन बन गया है। उस समय एक चमत्कार हुआ। भगवान श्री सत्य साई बाबा ने वहां के कई लोगों को इकट्ठा कर इस गोल पत्थर पर अर्थात श्री गोपाल स्वामी पर अभिषेक तथा गंध लेपन करने का आदेश दिया। लोगों ने आदेशानुसार उसका पालन किया। तब एक अति आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। आघात से पड़े उस गड्ढे की जगह उन्हें वेणुगोपाल कन्हैया का मनमोहक सुंदर रूप दिखाई देने लगा। सुंदर चित्रकला का प्रदर्शन सजग हो उठा, मानो भक्तों की आर्त पुकार सुनकर पत्थर भी पिघल गया हो और गोपाल मूर्ति के रूप में प्रस्तुत हुआ हो। संभवतः प्रस्तुत काल में आप उसे न देख सकें, किंतु वह पत्थर केवल पाषाण ही नहीं साक्षात गोपाल स्वामी है। उस दिन से इस ग्राम की बांबियों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। अब गाय बछड़ों का पालन सुरक्षित रूप से होता है और दूध अत्यंत स्वादिष्ट होता है। भला काली का दमन करने वाले महान गोपाल लाल को नागराज के शाप का क्षय करना असाध्य कैसे हो सकता है। आज भी यदि आप इस मंदिर में घड़ी आधा घड़ी बैठकर शांत एवं एकाग्र चित्त से श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करें तो वहां से आनंद रूपी मुरली गान की लहरें आपके अंतःपटल पर अमर्यादित रूप से उमड़ आएंगी। पुट्टपर्ति बहुत समय तक एक दुर्ग भी रहा है। ग्राम की पूर्वी सीमा पर आज भी एक प्राचीन किले का बुर्ज अपना सिर ऊंचा उठाए चारों ओर क्षेत्र पर प्रभुता की एवं राजू वंश की सार्वभौम ख्याति की गवाही देता प्रतीत होता है। इसी प्रदेश के एक अज्ञात कवि ने यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है, वर्तुलाकार में फैले हुए नागाधिराज मानो इस स्थान के रक्षक किले हैं। नागिन के समान अभिमान से डोलती चित्रावती नदी शत्रुओं का दमन करती है। गोपुर के समान अपने शिखरों का प्रदर्शन करते नागाधिराज मंदिरों से निकले हुए घंटानाद को अनुगुंजित करते हैं और भक्तगण को आशीष देते हैं। वहां की आरोग्यप्रद वायु में धूप दीप की सुगंध घुल मिल जाती है। निकट ही बुक्कपट्टनम नगर और चिक्कराय निर्मित स्फटिकवत विशाल सरोवर है। एक स्वतंत्र प्रपंच, अनोखी वाणी तथा नारायण की रानी, ऐसा है यह पुट्टपर्ति ग्राम। समस्त ग्राम को श्राप से विमुक्त करने के लिए जिस पत्थर से नागराज की हत्या की गई थी उसे गोपाल नंद मानकर राजू वंशजों ने ही उस स्थान पर मंदिर की प्रतिष्ठा की थी। इसके अतिरिक्त सत्यभामा का मंदिर स्थापित करने का श्रेय भी इस वंश के ही श्री सत्य साई बाबा के पिता में कुंडम राजू को ही प्राप्त। सारे भारत में सत्यभामा का मंदिर यही है ऐसा माना जाता है।
इस पुट्टपर्ति प्रदेश के महात्म्य की कथा के संदर्भ में भगवान ने अप्रैल 2002 के उपदेश में ये कहा था कि पुट्टपर्ति का अर्थ दीप्ति है, अतः पुट्टपर्ति दीप्तिमान क्षेत्र है। पहले इसे पुट्टवर्धिनी कहते थे। पुट्ट माने बाम्बी यानी सांप का बिल। इस क्षेत्र में बहुत सारे बाम्बी थे। रामायण में भी बाम्बी का उल्लेख मिलता है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जब ध्यानमग्न थे तो वो भी पूरी तरह बाम्बी से ढक गए थे। सर्पों ने उनके शरीर को अपना निवास स्थान बना लिया था। हमारे भीतर भी कई सर्प रूपी दुष्ट प्रवृत्तियां हैं जो कि शरीर रूपी बिल में छुपी बैठी हैं। नामस्मरण एक नाद स्वर की भांति है जिसके कारण सारे सर्प बाहर आ जाते हैं। यही नामस्मरण भी हमारा जीवन श्वास है। हमें नामस्मरण को 2400 घंटे करना चाहिए। ये नामस्मरण ही हमें जीवन चक्र से बाहर निकलाएगा। भगवान कहते हैं कि आज मनुष्य की दुर्दशा इसलिए है क्योंकि वो नामस्मरण से कतराता है और लज्जा का एहसास करता है। ये एक बहुत ही दुखद बात है। सबको नामस्मरण पूरी श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए, चाहे वो कोई भी आयु के हो, किसी भी सामाजिक पद पर हो या किसी भी परिस्थिति में हो। नामस्मरण आपके श्वास की तरह आपके साथ होना चाहिए। यही है भगवान का संदेश।
प्रेम मुदित मन से करो राम 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 श्री राम राम कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक भव समुद्र सुखद नाव एक शांति सुख निदान दिव्य राम परम शांति सुख निदान दिव्य राम परम शांति निराधार को आधार एक राम पिता बंधु सख सब ही राम नाम माता पिता बंधु सख सब ही राम नाम माता पिता बंधु सख जन रीवन धन एक राम
अभी आप प्रेम अवतार श्री सत्यसाई इस कार्यक्रम के अंतर्गत पुट्टपर्ति के नामांकन की दिव्य कथा का आनंद ले रहे थे। October 20, 1940 भगवान ने अपने अवतरण की घोषणा की। उस समय प्रभु ने भजन के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्रकट किया। कलयुग में जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, इसके लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है नाम स्मरण। इस साधना में सहयोग करने के लिए हम लाए हैं भजन प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें एक मधुर भजन के सार को समझकर उसे सही प्रकार से गाने का अभ्यास भी हम इसमें करेंगे।
साई राम। रेडियो साई के भजन सीखने के कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज का हमारा भजन जिसे हम स्वरबद्ध करके सीखेंगे है
हरि नाम गाते चलो, साई नाम गाते चलो।
इस भजन की सुंदरता यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न नामों को इसमें भजते हैं, जैसे कि माधव अर्थात वे जो माया के स्वामी हैं, गोविंद जो गो अर्थात इस पृथ्वी के सभी जीवों के परिपालक हैं, विठला जिन्होंने भक्त के पराधीन होने का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया, अपने भक्त पुंडरीक के कहने पर वे एक ईंट पर खड़े हो गए क्योंकि वह उस समय अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था। भगवान ने अपने इस आचरण से यह भी प्रकट किया कि जब भी कोई जीव सत्कर्म में संलग्न होगा वे उसके निकट सदैव उपस्थित रहेंगे। आइए अब हम इस मधुर भजन के शब्दों को जान लें।
हरि नाम गाते चलो, साई नाम गाते चलो, माधव गोविंद गोविंद माधव नाम गाते चलो, गोविंद विठला गोपाल विठला, जय परति विठला जय साई विठला, माधव गोविंद गोविंद माधव नाम गाते चलो।
अब आप सब इस भजन के शब्दों से अवगत हैं। आइए अब हम इस भजन को संगीत के साथ सीखेंगे। जैसे जैसे रवि कुमार भैया इसकी हर पंक्ति को गाएंगे आप सब भी इसे उसी सुर में दोहराएं। इस भजन का स्केल सी मध्यम या फिर एफ पंचम है, जिसे हिंदी के स्वर ग्राम में सफेद चार कहते हैं।
हरि नाम गाते चलो, साई नाम गाते चलो, 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 माधव गोविंद गोविंद माधव 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 नाम गाते चलो, हरि नाम गाते चलो, साई नाम गाते चलो, हरि नाम गाते चलो, साई नाम गाते चलो, गोविंद विठला गोपाल विठला, गोविंद विठला गोपाल विठला, गोविंद विठला गोपाल विठला, गोविंद विठला गोपाल विठला, जय परति विठला जय साई विठला, जय परति विठला जय साई विठला, जय परते विठला जय साई विठला
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 माधव गोविंद गोविंद माधव नाम गाते चलो
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 हरि नाम गाते चलो साई नाम गाते चलो
अब इस भजन का पूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए इसे उसी प्रकार सुनाएंगे जिस प्रकार इसे भगवान के समक्ष प्रशांति मंदिर में गाते हैं आप सब भी न केवल इसका श्रवण करें अपितु इसे साथ में गाएं
हरि नाम गाते चलो साई नाम गाते चलो माधव गोविंद गोविंद माधव नाम गाते चलो Oh गोविंद विठला गोपाल विठला जय पति विठला जय साई विठला माधव गोविंद गोविंद माधव नाम गाते चलो माधव गोविंद गोविंद माधव नाम गाते चलो
भगवान से हमारी यही विनती है कि हमारा यह जीवन उनका दिव्य नाम गाते गाते व्यतीत हो। आशा है कि आप सब हमारी यह प्रस्तुति को पसंद कर रहे हैं। अगले हफ्ते हम रेडियो साई के माध्यम से फिर से एक नए भजन के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। आप सभी श्रोताओं का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय साई राम।
साई प्रेम वाणी भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में।
साई राम। भाइयों और बहनों, आज का साई प्रेम वाणी का ये सफर यहीं पर समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि भगवान बाबा के जीवन चरित्र से आप भी प्रभावित होंगे और उनके वचनों को अपने जीवन में सहर्ष सम्मिलित करेंगे। आपके प्रश्नों का या आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप अपने सुझाव या प्रश्न हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258। फिर से 9393258258 या ईमेल listener@radiosai.org listener@radiosai.org। भगवान के चरण कमलों पर हमारा आभार पूर्ण प्रणाम, इस प्रार्थना के साथ कि हमारा जीवन भी उनका संदेश बने। रेडियो साई प्रशांति निलयम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलने के वचन के साथ विदा लेते हैं। जय साई राम।
ओम श्री साई राम। रेडियो साई के श्रोताओं के लिए एक और शुभ समाचार। अब आप कभी भी कहीं भी हमारी हिंदी सेवा साई प्रेम वाणी का आनंद ले सकते हैं। हमारा लिंक radiosai.org/hindi पे जाकर आप हमारे मंगलवार शाम 7:30 से 8:30 तक प्रसारित कार्यक्रम दोबारा इस लिंक पर सुन सकते हैं radiosai.org/hindi। कहीं भी कभी भी साई प्रेम वाणी, साई का प्यार घर घर पहुंचाने।